साथियों नमस्कार, आप सुन रहे हैं छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के लिए मैं जिला समन्वयक दिनकर पातुकर। साथियों जैसा कि विदित है, आज 14 जनवरी अर्थात मकर संक्रांति। संपूर्ण भारतवर्ष में मकर संक्रांति का पर्व अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और आज इस मकर संक्रांति पर हमारे साथ रूबरू होने आ रहे हरिभक्त परायण नारायण महाराज शिंदे जी। नमस्कार महाराज जी।
नमस्कार महाराज।
महाराज जी, हम आपसे जानना चाहते कि भारतवर्ष में मकर संक्रांति के पर्व के पीछे आध्यात्मिक महत्व क्या है?
मकर संक्रांति का पर्व मनाने के लिए आध्यात्मिक पर्व बहुत बड़ा है। सदियों से चलता आ रहा है कि संतों ने माघ मेला पहले चालू किया, इसी पर्व के ऊपर कुंभ मेला आयोजित किया जाता रहा, महाकुंभ मेला आयोजित करता किया जाता रहा। पुराण काल से लेकर आज तक का ये इतिहास है कि सूर्य जब मकर राशि में आता है, उत्तर दक्षिणायन छोड़ते हुए उत्तरायण में प्रवेश करता है, तो मकर संक्रांति का महापर्व काल आता है। इस पर्व काल को हम यदि मनाते हैं तो हमारे जीवन की बहुत सारी व्याधियां दूर चली जाती है। आध्यात्मिक बात तो ऐसा है कि इस संक्रमण के ऊपर हम यदि दान करते हैं, धर्मानुकूल कुछ आचरण करते हैं, आध्यात्मिक विचारधारा से चलते हैं, तो हमारी जीवन की बहुत सारी व्याधियां, बहुत सारे पाप नष्ट होते हैं, ऐसा हमारी शास्त्रों का मत है। तो इस पुराण कालीन परंपरा को निभाने के लिए हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुराणों ने इस महाकाल को, इस पर्व काल को इतना अच्छे से मना है, इतना अच्छे से मनाया जाने के लिए कहा है कि जिसको भी अपनी आध्यात्मिक उत्क्रांति करना हो, आध्यात्मिक उत्कर्ष करना हो, अपने विगत जन्म के या इस जन्म के कुछ पापों को घटाना हो, तो इस पर्व को मनाने से हमारे जीवन के ज्ञात अज्ञात बहुत सारे पाप नष्ट होते हैं। स्नान का महत्व है, दान का महत्व है, भगवान की कथा सुनने का महत्व है और दान देने का भी महत्व है।
महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारतवर्ष में यह मकर संक्रांति का पर्व किस किस नाम से मनाया जाता है और मनाने का तरीका कैसा है?
हाँ, भारत वर्ष में ये पर्व अलग अलग तरह से अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है। कहीं पर पोंगल नाम से मनाया जाता है तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, और किसी राज्य में अलग ढंग से मनाया जाता है। और इस पर्व काल के ऊपर प्राय हमारे आपस में भाईचारा बनता रहे, तीर गुड़ घया गुड़ गुड़ बोला मराठी में कहा जाता है कि भाईचारा निभाने के लिए अपने आपस की जो विवाद है, चाहे वो सामाजिक विवाद हो या और किसी तरह के विवाद हो, उस विवादों को समाप्त करते हुए भाईचारा बढ़ाने के लिए इस त्योहार का इतना सामाजिक महत्व रखता है कि हम मीठी वाणी में बोलते रहे, किसी में कलह हो तो कलह को भूल जाए और दोस्ती का हाथ सामने करे, ताकि हमारा राष्ट्रीय जीवन, सामाजिक जीवन या कौटुंबिक जीवन इसमें एक सही मायना आता रहे। कुछ लोगों में ऐसी मान्यता है कि अपने बड़े लोगों के पैर धुलवाने का एक तरीका है। कहीं कहीं पर हमारी माताएं अपना जो संधि होता है, अपने जो रिश्तेदार होते हैं या बच्ची ब्याही गई हो, तो उनके ससुराल वालों के पैरों को धोने के लिए और बेटी के ससुराल में चली जाती है, ताकि वहां के लोगों का ये प्यार अपनी बेटी के लिए बनता रहे, हमारे लिए बनता रहे। और हल्दी कुमकुम का एक प्रोग्राम इसमें किया जाता है, ताकि सामाजिक जो कार्य है, समाज में एकता बनी रहे, प्यार बना रहे। इसलिए अलग अलग तरह से अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार इस त्योहार को मनाया जाता है। जैसा कि हमारे छिंदवाड़ा जिले में पिंडी खाकर, ये कंद है, उसको खाकर हम मनाते हैं। क्यों कि आने वाला जो काल होता है, वैज्ञानिक इसका बहुत महत्व रखता है। आने वाला जो समय होता है संक्रांति के बाद में या वसंत ऋतु के बाद में, तो उसके पश्चात ग्रीष्म ऋतु आता है। ग्रीष्म ऋतु जब आ जाता है तो हमारा जीवन है वो इतना धूप से, कड़ी धूप से, धूप का सामना करने के लिए सज्ज करना पड़ता है। तो हमारे जो शास्त्रों ने परंपरा लगाई, तिल या गुड़ खाकर उस आने वाली दुखकाली का सामना करने का सामर्थ्य हमारे शरीर में हो, इसलिए एक कंद स्वरूप पिंडी हम खाते हैं। जैसा अमरावती जिले में गए तो वहां पर मोमना खाने की पद्धत है। मोमना भी एक कंद का एक तरीका है, जैसा शकरकंद हुआ करता है, जैसी पेंडी हुआ करती है, तो उधर मोमना एक बड़ा एक कंद होता है, जैसा हम मराठी में कवड़ बोलते हैं, या एक छोटा सा एक प्रारूप अपने कुंबड़े का छोटा सा प्रारूप बोलेंगे, ऐसा एक कंद जमीन में लगता है, उसका भी एक बेल होता है, उसको खाकर ये त्योहार मनाते हैं, ताकि आने वाले दुपकाली का हम साधना कर सके, हमारा शरीर हमारा मन मस्तिष्क इसका हम इतना हम तैयार करें, ताकि आने वाले भविष्य के ऋतु का हम सामना कर सके।
महाराज जी, जैसा कि मकर संक्रांति के पर्व पर तिल गुड़ के साथ ही पतंग उड़ाने का भी एक प्रचलन है, तो पतंग उड़ाने के पीछे क्या कारण है?
पतंग उड़ाने का एक कारण है, जैसा हमारा दिन सत्संदी हो, आसमान खुला है, खुले आसमान के बीच में रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने के बाद उसका एक डोर तो अपने हाथ में है, पतंग आसमान में उड़ती है, उसका एक आध्यात्मिक कारण या सामाजिक कारण ऐसा है, एक समाज को एक संदेश देना है। कौन सा संदेश देना है? चाहे हम खुले आसमान के नीचे कितने भी उड़े, लेकिन हमारे जीवन रूपी आध्यात्मिक डोर भगवान के पास है, उड़ाने वाला कोई और है, पतंग उड़ती है, उसको वो इस पतंग को लगता होगा कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ, लेकिन उड़ाने वाला कोई और होता है, और जिसके हाथ में डोर है वो डोर खींच ले तो अपने आप पतंग नीचे आ सकती है, या डोरा रस्सी यदि कट जाती है, पतंग का डोर यदि कट जाता है तो रस्सी नीचे आ जाती है और खुले आसमान में बिखर जाती है पतंग, तो हमारा जीवन भी उसी तरह से बिखर जाएगा। यदि भगवान के हाथ से हमारे जीवन रूपी पतंग का डोरा यदि कट जाता है तो जैसी पतंग कहीं पर जाकर फट जाएगी, कहीं पर जाकर लटक जाएगी, उसी तरह से हम भी कहीं ना कहीं जाकर लटक जाएंगे और हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ये एक संदेश देना है, और ये जब तक हाथ में पतंग है तो उसका एक आनंद लेना है, तो हमें खुले आसमान की छत के नीचे जीवन रूपी पतंग का खिलौना, भगवान के हाथ का खिलौना बनकर एक नई तरह से आनंद लेकर हमारी जिंदगी जीना है। जैसे पतंग हवा में स्वेच्छा से विहार करती है, वैसा भगवान का नाम लेकर हम भी स्वेच्छा से विहार करें, जीवन का आनंद ले और खुशियां मनाते रहे।
महाराज जी, जैसा कि मकर संक्रांति पर गंगा सागर की यात्रा होती है और कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, तो इसके पीछे क्या कारण है?
इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हमारे आध्यात्मिक पुराणों में श्रीमद् भागवत में हमारे आध्यात्म में ऐसा वर्णन आता है, एक लड़का ऐसा ही धरती के ऊपर जन्म लेता है, कर्दम ऋषि के गर्भ से, कर्दम ऋषि के तेज से माँ देव यानी उन महाराज मनु की लाडली बेटी, उनको तीन बेटियां है, एक दो बेटे, एक महाराज उत्तानपाद, एक प्रियव्रत, तीन बेटियां आकुति प्रसूति देवहूति। देवहूति नाम की जो बेटी है वो कर्दम ऋषि को ब्याही जाती है। कर्दम ऋषि का विवाह होने के पश्चात तुरंत वो आध्यात्मिक चिंतन करने के लिए 80 साल तक आंखें खोली नहीं, तपस्या करते रहे। उसके पश्चात इन भगवान ने उनको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, स्वयं मैं आपके गर्भ से जन्म लूंगा, और इन जो तप करने का उद्देश्य था वो सफल हो गया। लेकिन प्राय ऐसा हुआ कि 9 बेटियां पहले हुई, उसके बाद में कर्दम जी का जन्म हुआ, अपने कर्दम जी के यहाँ कपिल भगवान का जन्म हुआ। कपिल सांख्य शास्त्र के रचयिता है और सांख्य शास्त्र के निर्माता है, लेकिन ये कपिल स्वयं ही भगवान विष्णु का स्वरूप होने से जब कर्दम जी तपस्या करने के लिए निकल गए तो अपने माँ को इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की बड़ी शिक्षा दी, और स्वयं माँ उनकी भगवत स्वरूप में विलीन हो गई। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान देने के पश्चात बेटा माँ का आशीर्वाद लेकर तपस्या करने के लिए निकल गया। लिंग पुराण में इसका ऐसा वर्णन आता है, या शिव पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि इन्होंने 1000 साल तक काशी में तपश्चर्या की, भगवान शिव जी इनके लिए प्रसन्न हो गए, और उसके पश्चात इन्होंने मार्ग चुना जहां गंगा सागर के साथ एक रूप होती है, वही जाकर अपन तपस्या करें, और जहां पर गंगा जी स्वयं सागर में समाई गई वहां पर इन्होंने कड़ी तपस्या आरंभ की। जब राजा सगर के पुत्रों ने उनका छल किया तो 60,000 राजा सगर के सुपुत्र सूर्यवंश के राजा अगर इनके सुपुत्र को इन्होंने अपनी तपस्या के बल से जैसी आंखें खोली तो जला डाला। महाराज उनके सगर जी का जो बेटा था वो खोजने के लिए गया, महाराज अंशुमान, उसके बाद में दिलीप, फिर राजा भगीरथ। कपिल भगवान ने बोला कि गंगा को लाइए और गंगा को लाने के बाद ये सब मुक्त हो जाएंगे। भगीरथ जी के कड़ी प्रयास से स्वर्ग से गंगा आई और जहां पर कपिल महामुनि ने इन 60,000 सगर पुत्रों को जलाया था उन सभी को पावन करती हुई गंगा सागर से जाकर मिल गई। लेकिन वहीं पर तपस्या इनकी आज भी चालू है और मकर संक्रमण की इस पावन पर्वकाल के ऊपर ऐसा हुआ होगा कि ये सभी सगर पुत्र वहां गंगा जी में सम्मिलित होकर उनको मुक्ति मिली होगी। और उसी पावन पर्व के ऊपर जब सागर के साथ गंगा मिलती है, जहां पर कपिल भगवान ने तपस्या की, वहां पर स्नान करने के बाद जो जो स्नान करता है उनकी एक नहीं हजार पीढ़ियां सर जाती है। इसलिए गंगा जहां पर समुद्र के साथ एक रूप होती है वहां पर तपस्या है भगवान कपिल जी की। वहां पर स्नान करने से, उनके उनके दर्शन करने से, वहां पर जाने से एक बार यदि स्नान कर लिया तो सारे तीर्थों का स्नान करने का और हजारों पीढ़ियों को तारने का बहुत बड़ा पुण्य का लाभ होता है। इसलिए हमारे शास्त्र ने ऐसा वर्णन किया है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार।
महाराज जी एक अंतिम प्रश्न आपसे।
हाँ।
कि भाई मकर संक्रांति पर वारकरी संप्रदाय के में जो महान संत हो चुके उन्होंने इस पर्व को किस तरह मनाया और इसके ऊपर कौन कौन से अभंग लिखे गए?
हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। मैं वारकरी संप्रदाय से होने के कारण इसका महत्व बताता हूँ। देवतिरी आला, देवतिरी आला, गोड़े गोड़े जीव धाला। भगवान सा एक ऐसा है, एक शास्त्र प्रचिति, एक गुरु प्रचिति और आत्म प्रचिति। वेदांत शास्त्र की तीन प्रचितियां मानी जाती है। हमारा धर्म शास्त्र वेदांत को बड़ी मान्यता देने वाला है। एक पुराण शास्त्र वेदांत शास्त्र, वारकरी संप्रदाय पुराणों को भी मानता है और वेदांत शास्त्र को भी मानता है। वेदांत शास्त्र का ऐसा मत है कि भगवान को पाने के लिए साधना करने की करने का एक तरीका होता है और शास्त्र के आधार पर जब हम आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा लेकर साधना करते हैं तो भगवान उसमें साक्षात्कार देते हैं, उसी को प्रचिति कहा जाता है। प्रचिति तो प्रचिति तीन प्रकार की होती है। एक शास्त्र प्रचिति, शास्त्र का अध्ययन करने के बाद हमें जो अनुभूति आई भगवान की कृपा से वो शास्त्र प्रचिति। एक गुरु प्रचिति, प्रचिति एक श्री गुरु आध्यात्मिक दीक्षा देने के बाद अपने शिष्य को अपने तपोबल से, अपने ज्ञान से एक भगवान की एक अनुभूति करा देते हैं, उसको गुरु प्रचिति। शास्त्र प्रचिति, गुरु प्रचिति और एक होती है आत्म प्रचिति। आत्म प्रचिति यानी मैं स्वयं भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूँ, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। सारे विश्व में जो व्यापक परमात्मा है वो परम तत्व यानी मैं स्वयं हूँ। इस तरह से जो अनुभूति आती है और फिर अनुभूति आने के बाद उस साधक को या उस सिद्ध पुरुष को ऐसा लगता है कि सारे जगत में जगत नहीं, विश्व प्रपंच नहीं, ये तो विश्व सारा परमात्मा स्वरूप है। और इसी परमात्मा स्वरूप अनुभूति आने के बाद मैं स्वयं भी परमात्मा हूँ, ब्रह्म हूँ और जगत भी ब्रह्म है, ब्रह्म से ही मैं आया हूँ और ब्रह्म में ही मुझे विलीन होना है। जैसा सूरज का किरण सूरज से ही आता है और सूरज का किरण सूरज में ही सम्मिलित हो जाता है, उसी तरह से ब्रह्म का मैं ये किरण हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है, सुप्रीम सॉल या परम तत्व। तो परम तत्व यानी परम तत्व का अंश में हूँ और परम तत्व में ही जाकर मुझे मिलना है। तो जो परम तत्व की अनुभूति है, जैसा समुद्र से जल ले लिया तो जल समुद्र का ही है और छोड़ेंगे तो भी समुद्र में ही वो एक रूप हो जाएगा, वैसा मैं स्वयं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म का ही स्वरूप हूँ और ब्रह्म में ही मुझे विलीन होना है। तो ये हो गई आत्म प्रचिति। तो तीन प्रचितियां जो छात्रों ने कही वो आत्म प्रचिति पाने के लिए साधक जब साधना करता है या कोई भक्त अपनी उपासना करता है तो उपासना करते समय धीरे 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 उपासना करे। देव त्रिया आला, एक एक तिल, एक एक तिल, आज थोड़ी साधना करे, कल फिर साधना करे, परसों फिर साधना करे। साधना करते करते एकदम परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। जैसा तिल में छुपा हुआ होता है तेल, उस तेल का जैसा स्वरूप होता है, निर्गुण स्वरूप होता है, वैसे निर्गुण स्वरूप तत्व में हम भी विलीन होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। इसी एक कारणवश इस पर्व को हम मनाते रहे, साधना करते रहे। देवत्री आला, देवत्री आला, देवत्री आला, भगवान एक एक तिल हमारे करीब आएंगे। फिर जब हमें आत्मानुभूति हो जाएंगी तो एकदम गोड़ स्वीट मिठाई मीठा परमानंद हो जाएगा। गोड़े गोड़ जीव डाला, हमारा जो जीव है, हम जीव दशा में आए तो हम जीव दशा से ब्रह्म स्वरूप होकर एक रूप ब्रह्म से जब हो जाएंगे तो हमारे जीवन में मिठास आ जाएगी, सब सब हमारा अच्छा अच्छा हो जाएगा। इस तरह से हमारे संतों ने इस त्योहार को मनाया और मनाने की एक साजिश हमारे समाज को दी।
हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। मकर संक्रांति जैसे पावन पर्व पर आपने छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से रूबरू होकर छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के श्रोताओं के लिए अपनी महत्वपूर्ण राय साझा की। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी की ओर से समस्त जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं।
धन्यवाद।